कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का, जो इसराइलियों द्वारा सिने पर्वत से आरंभ की यात्रा को कनान की सीमा मुआब के मैदान तक की यात्रा से जोड़ती है। आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, यीशु 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 यीशु, रिश्ता हमसे जोड़ता है, हुरना तन्हा छोड़ता है, रिश्ता हमसे जोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है, यीशु यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु यीशु, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास सपने पाऊं, ओ जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास सपने पाऊं, बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है, बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है, यीशु 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 यीशु, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, यीशु यीशु मेरा ये
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, इससे पहले कि हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप हम में से प्रत्येक की आत्मिक आँखों को, हमारे कानों, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें, ताकि जब हम आपके जीवित वचन का अध्ययन करें तो आपका वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए। विशेष करके हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो दुखी और निराश हैं, जो परेशान और चिंताओं में हैं। इतना ही नहीं, वे भाई बहन जो बीमार हैं और अपने जीवन से थक चुके हैं, प्रभु जी आप उनसे भी बोले और बातचीत करें, ताकि आपके वचन के द्वारा वे अपने जीवन में आपकी शांति को प्राप्त कर सकें। हमारी प्रार्थना है कि आज के इस अध्ययन के समय आप हम में से प्रत्येक से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के समय के लिए। प्रार्थना आपके इकलौते बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि इस्राएलियों को परमेश्वर ने लाल बछिया का बलि चढ़ाने को कहा और यह उसके राख से उन्हें शुद्धिकरण की विधि उन्हें बताई गई। और उसी प्रकार हमें भी अपने पापों को परमेश्वर के निकटता में लाकर उसे स्वीकार करने को कहा गया था। आज हम इस अध्याय में अर्थात गिनती की पुस्तक 20 अध्याय में इन विषयों को देखेंगे। मरियम और हारून की मृत्यु, मूसा का आज्ञा उल्लंघन, एदोमियों द्वारा इसराइलियों को रास्ता न देना। मित्रों, इस अध्याय का आरंभ मरियम की मृत्यु तथा हारून की मृत्यु से अंत होता है। इसका संबंध मृत्यु से ही है। इसमें मूसा का पाप और एदोम के पाप की चर्चा भी की गई है। तो भी यह महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि इसमें इसराइल के घूमने का अंत और यात्रा का भी आरंभ है। मित्रों, यह भाग जो 14 अध्याय से 20 अध्याय है, इस भाग में इसराइली लोगों के जंगल में 40 वर्ष तक के भ्रमण काल का वर्णन मिलता है। यद्यपि यह बहुत विस्तार से नहीं है, फिर भी 40 वर्षों में जितनी भी घटनाएं घटित हुई उनमें से कुछ ही घटनाओं की चर्चा यहां पर है। इसराइल परमेश्वर की इच्छा से चूक गया, अतः कुछ अधिक बताने को बाकी भी नहीं रहा। हम इसराइली लोगों को परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा कहते हैं, परंतु बिना परमेश्वर की इच्छा पर चले हुए उनका कोई महत्व नहीं होता, और यही बात आज भी सच है। मित्रों, यही बात मुझ पर और आप पर भी लागू होती है। परमेश्वर की इच्छा से परे हमारा कोई भी महत्व नहीं है। जब हम विश्वासियों की देह में कार्यरत नहीं है तो उस वरदान का इस्तेमाल नहीं करते जो पवित्र आत्मा की शक्ति से दिया गया है, तो हम गौ के पांचवें पैर के समान निरर्थक हैं। वास्तव में अब हम रास्ते पर आ गए हैं। 37 वर्ष बाद कादेश में पुनः वापसी। आइए हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक 20 अध्याय उसके एक पद में लिखा हुआ है, पहले महीने में सारे इसराइली मंडली के लोग सीनै नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। यहां पर मरियम की मृत्यु का वर्णन है, परंतु केवल एक ही पद में है। उसके दफन की कोई भी लंबी प्रक्रिया नहीं दी गई है और न ही विलाप के दिन का गुणगान की चर्चा की गई है। सिर्फ मरियम की मृत्यु हुई और उसे दफन कर दिया। तब वे पुनः कादेश पहुंचे। वे 38 वर्ष पूर्व यहां आए थे। यद्यपि भ्रमण के ये लंबे वर्ष लोगों के लिए कोई उत्तम आशीष का समय नहीं था, परंतु उनसे सीखने के लिए बहुत सी सीख थी, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग इस संसार में यात्रियों के समान नहीं चल रहे हैं। हम यहां इस पृथ्वी पर केवल एक घुमंकड़ अर्थात यात्री बन गए हैं, या कहें कि हम खानाबदोशी बन गए हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं इसराइलियों का सातवीं बार कुड़कुड़ाना। गिनती की पुस्तक 20 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, वहां मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, सो वे मूसा और हारून के विरोध इकट्ठे हुए, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। मित्रों, निस्संदेह वास्तव में उनका मतलब यह नहीं था कि हम में से भी कोई मरना नहीं चाहता। मनुष्य के लिए मरना एक अस्वाभाविक बात है, परंतु वे शिकायत करते, विरोध करते और कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते भी हैं। यह सातवीं बार का कुड़कुड़ाना कि पानी की कमी के कारण हुआ है। हम आगे पढ़ते हैं गिनती 20 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा है, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहां मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? यहां तो बीज व अंजीर व दाखलता व अनार कुछ नहीं है, यहां तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां वापस वे कादेश पहुंचते हैं जहां पहले भी वे असफल ठहरे थे। वजह विश्वास रखने के वे पुनः शिकायत करते हैं। उन्हें दूध और मधु का देश तो आगे मिलेगा, पर यहां तो कुछ भी नहीं है। मेरे मित्रों, मुझे चिंता नहीं कि आज आप कहां पर हैं। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आपको जानना जरूरी है कि अस्थाई तौर पर आप यहां नहीं हैं। हम सभी इस संसार में परदेशी और यात्री हैं। किसी भी स्थान पर अधिक समय नहीं रहना है, अतः अधिक बातों के लिए शिकायत करना ठीक नहीं है, जो हम हमेशा करते रहते हैं। हम गिनती की पुस्तक 20 अध्याय के 6 पद में पढ़ते हैं, तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रत्येक बार जब इन्होंने शिकायत की व कुड़कुड़ाए, प्रभु का तेज प्रकट हुआ। उनकी शिकायत से परमेश्वर अप्रसन्न थे। इससे जानना चाहिए कि यदि हम बड़बड़ाने वाले या शिकायत करने वाले संत हैं, तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यह बिल्कुल सच है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो और कुछ भी करते क्यों ना हो। हम आगे देखते हैं, चट्टान से पानी अर्थात मूसा का आज्ञा उल्लंघन। गिनती की पुस्तक 20 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी और इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। लिखा है, लाठी लो। यह हारून की लाठी थी। हारून के साथ मंडली को इकट्ठा करके चट्टान से बातें कर। चट्टान से केवल बातें करने को क्यों कहा गया? कई वर्ष पूर्व, जैसा कि हम निर्गमन की पुस्तक उसके 17 अध्याय में पाते हैं, लिखा है कि जब चट्टान पर छड़ी मारी, पानी निकल पड़ा। मेरे मित्रों, हम आगे और देखते हैं कि चट्टान को केवल एक बार ही पीटना था। गिनती की पुस्तक 20 अध्याय उसके 9 और 10 में लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? मित्रों, ध्यान दीजिए, न केवल इसराइली लोग शिकायत करते हैं, परंतु अब यहां मूसा भी उनके विरुद्ध शिकायत करता है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? मुझे उससे बड़ी सहानुभूति है। वह 40 वर्षों से उनके साथ जंगल यात्रा में था और अब शायद थक भी चुका था। वह शायद अपने को भूल रहा है जब वह कहता है, क्या हम इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालें? मेरे मित्रों, मूसा ऐसा नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर है जो उनके लिए पानी का प्रबंध करेगा। उन्हें यहां एक बड़ा सबक सीखना है कि चट्टान प्रभु यीशु स्वयं है। अब मूसा क्रोधित हुआ और उसने कुछ किया जो नहीं करना था। इसी कारण वह प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश नहीं कर सका। हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक 20 अध्याय उसके 11 पद में, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। मित्रों, कुछ लोगों की शिक्षा है कि उसका चट्टान पर 2 बार लाठी मारना ही उसकी गलती थी। मित्रों, वह तो पहले ही एक बार चोट खा चुकी थी। चट्टान प्रभु यीशु की प्रतीक है। हम पहला क्रंथियों की पत्री 10 अध्याय उसके 4 पद में इसे पाते हैं। पापों के कारण मसीह ने केवल एक बार दुख उठाया, कभी भी दोबारा नहीं उठाया। वह एक ही बार मरा। इस प्रक्रिया से परमेश्वर उन्हें यह बात सिखाना चाहता था और मूसा को इसकी सुरक्षा करना व परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके प्रतीक को संभालना भी था। परमेश्वर ने उससे स्पष्ट कहा कि चट्टान से बात करना, बस उसे केवल इतना ही करना था, परंतु मूसा परमेश्वर की आज्ञा पालन में असफल ठहरा। हम क्रंथियों की पत्री 1 क्रंथी 10 अध्याय उसके 1 से 4 पद में पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनभिज्ञ रहो कि हमारे सभी पूर्वज बादल की अगुवाई में चले और सबके सब समुद्र के बीच से पार हुए। सब ने उस बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। मित्रों, जल बहुतायत से निकल पड़ा। मूसा की गलती से जल प्रवाह में कोई बाधा नहीं हुई। परमेश्वर कितना दयालु और कृपालु है। हम गिनती की पुस्तक 20 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इसराइलों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। मित्रों, परमेश्वर यह कहता है कि मूसा और हारून ने उस पर विश्वास नहीं किया और न ही उन्होंने इसराइल के सामने उसकी महिमा की। ऐसा करने से उस आश्चर्यकर्म की सारी प्रशंसा स्वयं ही बटोर ली, अर्थात उन्होंने वो प्रशंसा अपने लिए ले ली। मित्रों, जब हम नया नियम को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आखिरकार मूसा प्रतिज्ञा देश तक पहुंच ही गया था। वह दिव्य रूपांतर पर्वत पर यीशु मसीह के साथ उस भूमि पर दिखाई दिया जिसे देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इसराइलियों से की थी। मित्रों, कनान वास्तव में उस स्थान का नाम है जहां हमें विश्वास से जीवित रहना है। इस पृथ्वी पर यह जंगल है, परंतु आपको और मुझे कनान देश के आशीषें भोगनी चाहिए। यहोशू की पुस्तक के अनुसार ये आशीषें यीशु मसीह की मृत्यु एवं पुनरुत्थान के साथ मिलती है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करके इस मामले में पूरा समर्पण करना चाहिए। यही बात मूसा और हारून करने में विफल रहे। हम गिनती की पुस्तक 20 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं, उस सोते का नाम मरीबा पड़ा क्योंकि इसराइलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। मित्रों, आज हमारा अविश्वास सबसे बड़ा या विशेष पाप है। आज परमेश्वर की छवि को हम धूमिल बना देते हैं जब हम उसके वचन पर विश्वास न करके उसका अनादर करते हैं। आइए हम देखें, एदोमियों द्वारा रास्ता न देना। गिनती की पुस्तक 20 अध्याय उसके 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे कि तेरा भाई इसराइल यूं कहता है कि हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वह तू जानता होगा, अर्थात यह कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे, और मिस्रियों ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा वर्ताव किया। मूसा उनके राष्ट्र के विषय थोड़ा इतिहास की चर्चा करता है और तब उनकी भूमि से पार होने की आज्ञा मांगता है। हम देखते हैं 20 अध्याय के 17 पद में, सो हमें अपने देश में से होकर जाने दे, हम किसी खेत व दाग की बारी से होकर न चलेंगे और कुओं का पानी न पिएंगे, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाएं तब तक न दाहिने न बाएं मुड़ेंगे। अब बड़ी नम्रता के साथ यह विनती की जाती है, और एदोम उनका भाई था इसकी स्मरण कराई जाती है, परंतु उनको रास्ता न देकर एदोम ने महापाप किया। हम 20 अध्याय के 18 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु एदोमियों ने उसके पास कहला भेजा कि तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूंगा। मित्रों, इसराइलियों ने एदोमियों से पुनः विनती की कि उनके पास पशु और उनके बच्चे भी हैं, हमें निकलने को केवल रास्ता दीजिए। उन्हें निश्चय भी दिलाया कि वे किसी प्रकार की भूमि का नुकसान नहीं होने देंगे। हम अब आगे देखते हैं, गिनती 20 अध्याय उसके 20 से 22 पद में लिखा है, परंतु उसने कहा, तू आने न पाएगा, और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से उसका सामना करने को निकल आया। इस प्रकार एदोम ने इसराइल को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने से इनकार किया, इसलिए इसराइल उसकी ओर से मुड़ गए। तब इसराइलों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नाम पहाड़ के पास आ गई। मित्रों, यहां पर अब हम उनको देखते हैं, अब उनको मुड़कर एक अन्य मार्ग से गुजरना है जिसकी जरूरत उन्हें नहीं पड़ती यदि एदोम उन्हें निकलने का रास्ता दे देता। परंतु मेरे विचार से मूसा ने यहां गलती भी की। मूसा को बादल की अगुवाई प्राप्त करनी चाहिए थी, उसे अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। बजाय एदोम से विनती करने के उसे सीधे बादल के पीछे ही चलना था, और बादल उनको उस मार्ग से ले जाता जहां एदोमियों से किसी भी प्रकार का संघर्ष उत्पन्न नहीं होता। मेरा मानना है कि यह ईश्वर से आगे भागने का अच्छा उदाहरण है, और अभाग्यवश हम में से अधिकतर लोग इसके शिकार बनते हैं। मित्रों, अब हम आगे देखते हैं हारून की मृत्यु। अब हम अध्याय के अंत में एक दुखद घटना के द्वारा इसे समाप्त करते हैं। हारून की मृत्यु हो जाती है, परंतु इस अध्याय में मेरे और आपके लिए अनेकों संदेश भरे पड़े हैं। आइए हम पढ़ें गिनती की पुस्तक 20 अध्याय उसके 23 और 24 पद को। और एदोम देश के सिवाने पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नाम सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने ना पाएगा जिसे मैंने इसराइलियों को दिया है। मित्रों, आपको मालूम है कि आज भी अधिकतर उधार प्राप्त लोगों को इस जीवन में उधार का आनंद और फल का लाभ नहीं मिल पाता, और वे स्वयं के जीवन में भी शांति व मेल नहीं देखते। वे प्रभु यीशु के साथ चलना और संगति का आनंद भी नहीं जानते, परंतु फिर भी मैं उनके उद्धार पर उंगली नहीं उठाऊंगा। हारून कुछ इसी प्रकार के जीवन का प्रतीक है। उसे निर्जन में 40 वर्ष यात्रा का कठोर अनुभव था, परंतु प्रतिज्ञा देश में आराम से बैठकर फल फूल प्राप्ति का आनंद नहीं जानता था। दूध और मधु के देश में रहकर भी इनका आनंद लेने से वह वंचित था। हमारे अविश्वास के कारण हम में से अधिकतर लोग अपने को ही इसी स्थिति में पाते हैं। मित्रों, हम गिनती की पुस्तक 20 अध्याय उसके 25 से 29 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, सो तू हारून और उसके पुत्र इलियाजर को होर पहाड़ पर ले चल, और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र इलियाजर को पहना, तब हारून वही मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया, और वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र इलियाजर को पहनाए, और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और इलियाजर पहाड़ पर से उतर आए, और जब इसराइल की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इसराइल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम सबके लिए एक कीमती सीख है। इसराइल के लिए यह बड़े दुख की बात थी, परंतु आज हमारे लिए धन्यवाद देने का कारण बना है। मित्रों, इसराइली लोग 30 दिन तक विलाप करते रहे। मेरे विचार से उनमें से अनेक लोग हारून महायाजक की संगति में रहे थे। वे हारून को अच्छी तरह से जानते थे। वे अपनी भेंट बलि लेकर हारून के पास आकर उससे पूछते थे, क्या आप बता सकते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे? और शायद हारून उनसे शांति भरे वचन कहता, हमारा परमेश्वर दयालु अत्यंत कृपालु है, और तब उनके लिए बलि चढ़ाता। अब वे इलियाजर को हारून महायाजक के कपड़ों में देखते हैं। हारून तो मर गया और मरकर चला गया, और अब तो एक नया महायाजक नियुक्त है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करता है। हारून की पद्धति पर कोई पुरोहित नहीं है। हमारा प्रभु है जो मलकीसेदेक की नाई है। उसके जीवन का न आदि है और न अंत है। वह लगातार पुरोहित बना रहता है। हमारा महायाजक मरने वाला नहीं है। वह यहां इस धरती पर एक बार मरा है, परंतु वहां ऊपर सदैव के लिए जीवित है। वह वहां हमारे लिए सदैव वास करेगा। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। वह व्यक्तिगत रूप से हमें जानता है, और हम भी उसे जान सकते हैं। उसे जानना ही अनंत जीवन है। उसको जानने में ही अनंत काल बीत जाएंगे, और वह नहीं बदलेगा। मेरे मित्रों, आज हमारे लिए यही सबसे बड़ी धन्यवाद की बात है। मित्रों, इस्राएली लोगों का वनवास अर्थात निर्जन प्रदेश की यात्रा समाप्त हुई। अब वे प्रतिज्ञा देश कनान में प्रवेश करेंगे। प्रभु परमेश्वर के पास भी एक प्रतिज्ञा का देश है, जिसमें वह आज ही हमारा प्रवेश चाहता है। अभी इसी समय अर्थात तुरंत ही। केवल मसीह ही एक ऐसा जन है जिसमें होकर हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। मित्रों, यह है कि किसी नगर में प्रवेश करने के लिए आपको स्वयं चलकर जाना है, न कि नगर आपके पास आएगा। यह बहुत ही सरल बात है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन दुख की बात है कि हम लोग सब कुछ जानते हुए भी उसे नजरअंदाज करते हैं। यह जानते हुए भी कि प्रभु यीशु सारे मानव जाति के लिए मरा, वह सिर्फ एक जाति, एक देश व व्यक्ति के लिए नहीं मरा, क्योंकि वह अपनी रचना से बेहद प्रेम करते हैं, वह आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए वह आपके पापों के बदले में मरे। तो आप क्यों अपनी बुराइयों को छोड़कर यीशु के पास नहीं आते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आप शांति और आनंद प्राप्त करें? मित्रों, याद रखें कि हम सब इस पृथ्वी पर परदेशी हैं और एक दिन हम सबको इसे छोड़कर जाना ही है। तो जो धन आपने एकत्र किया है शायद वह कुछ काम ना आए, तो क्यों ना हम स्वर्ग में अपने अच्छे कार्यों एवं मसीह को अपने जीवन में जगह देने के द्वारा स्थान बनाएं, ताकि जब हम यहां से जाएं तो हमें स्वर्ग में जगह मिले। मूसा भी इस प्रतिज्ञा के देश में मृत्यु प्रांत दिखा, जिसे हमने यीशु और इलिया के साथ उसे उस भूमि पर खड़े देखा। क्या आप उस प्रतिज्ञा के देश में जाना नहीं चाहेंगे? मित्रों, निर्णय आपको लेना है, इसलिए आप अवश्य ही इस पर विचार करें। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप अवश्य ही इस सही निर्णय को अपने जीवन में लेंगे, ताकि आप प्रभु के द्वारा उन आशीषों को प्राप्त कर सकें जिसे प्रभु ने आपके लिए रखा है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
रूह में बसा है, जान में बसा है, उसकी सच्चाई जग में सदा है। बसा है उसकी सच्चाई जग में सदा है। रू की बातें बोलता है, राज वो गहरे खोलता है। रू की बातें बोलता है, राज वो गहरे खोलता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, जिसने पुकारा